कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से ही आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीव को उपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार के लिए ऐसा करते हैं। तो वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचार के लिए ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं, अतः ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावना भावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मनुष्य जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है, अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। तो ये दान के बारे में प्रभुपाद जी कुछ बातें बताई हैं। अब आप निकालिए पृष्ठ संख्या 487, उसमें भी दान के बारे में प्रभुपाद बताते हैं। पृष्ठ संख्या 487। इसमें ये तीसरा पैरा है। प्रॉपर लिखते हैं ये 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 1, 2, 3 इकट्ठे हैं इनके तात्पर्य में। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। तो यहां भी प्रभुपाद बताते हैं 50% क्या करें, कृष्ण भावनामृत के कार्य में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे, संस्थान समितियों को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसा आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है, क्योंकि ये धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने ये योजना बनाई है, लाइफ मेंबरशिप, ये एक दान है। तो ये दान से व्यक्ति का धन शुद्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति जितना धन कमा रहा है वो किस लिए कमा रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नियों के लिए, अपने शरीर के लिए कमा रहा है। और जीवन का उद्देश्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति। तो इस प्रकार से वो जो धन है वो बंधनकारी होता है, वो कर्म बंधनकारी होता है। अगर 50% अगर वो इस प्रकार भगवान के प्रचार में लगाता है तो उसकी शुद्धि होती है। अगर 50% नहीं लगाए तो 10% लगाए। तो इस तरह से कुछ जो है ना, अगर प्रतिशत दान अगर करता है व्यक्ति नियमित रूप से तो उससे शुद्धि होती है। इस तरह से हमने भी कुछ लोगों को तैयार किया है कि वो हर महीना कुछ दान दें। कोई 501 देते हैं, कोई 1000 देते हैं, कोई 301 देते हैं। तो इस तरह से हर महीना उन्होंने बांधा है दान देने का। तो ये जो है ना, उनको पवित्र करता है। तो दान के बारे में हमने कुछ चर्चा की है। अब तपस्या के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तपस्या जो है, जो भगवद गीता का अध्ययन है, ये एक तपस्या भी है। भगवद गीता का अध्ययन तपस्या भी है। 4वें अध्याय में भगवान कहते हैं, बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद भाव आगता। बहुत से लोग ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। तो ज्ञान का मतलब क्या है, श्रवण करना, अध्ययन करना भगवद गीता का, श्रीमद भागवत का, तो ये ज्ञान की तपस्या कहलाती है। तो इससे कई लोग मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान ने कहा है। और जो प्राकृत सहजिया होते हैं उनका सिद्धांत बड़ा ही खतरनाक है। वो क्या कहते हैं कि जीवन में तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है और सीधे कृष्ण से प्रेम करो। तो सीधे कृष्ण से प्रेम करते हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, किसी प्रकार की तपस्या नहीं करते हैं, है ना। तो वो सहजिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जीवन पवित्र नहीं हो पाता है और वो प्रेम का केवल दिखावा करते हैं और एक ऐसे मिथ्याचार वो कहलाता है। तो तपस्या बहुत आवश्यक है, क्योंकि तपस्या भगवान ने कहा है गीता के अंत में भी, इदम तेना तपस्काय, कि ये भगवद गीता उसको नहीं बताना जो तपस्वी ना हो। तो तपस्या का मतलब है कि अपने जीवन में कुछ ऐसे नियमों का पालन करना है, जो कि आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसको तपस्या कहते हैं। धर्म के चार चरण हैं, सत्य, तपस्या और सत्य, सोच, तप और दया, है ना। तो तपस्या भी उसमें से एक है। और तपस्या की रक्षा के लिए क्या छोड़ना चाहिए, जो हम लोग चार नियम का पालन करते हैं, नशा। जो नशा है ये तपस्या को नष्ट करता है। जो व्यक्ति नशे में होता है उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और कब कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। और तपस्या के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस समय क्या करते हो, आपको किस समय क्या करना है। जैसे कि मंगल आरती में उठना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको 4:30 बजे पहुंचना है मंदिर में। तो पहले से अपनी बुद्धि लगाओ कि आपको उठना किस समय है और किस समय आपको स्नान करना है, तिलक लगाना है और आपको 4:30 बजे यहाँ मंदिर में पहुंचना है। तो ये तपस्या कहलाती है। जो भी नशा करता है उसे कुछ पता नहीं चलता है कि वो किस समय उठ रहा है, किस समय क्या कर रहा है, और कोई भी काम जो है ना समय पर वो कर नहीं पाता है। तो इसलिए जो नशा है ये तपस्या के विरुद्ध होता है। एक श्लोक है नारद पंचरात्र का, इसमें तपस्या के बारे में बड़ा अच्छा इसमें कहा गया है। आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भगवान की आराधना होती है तो तपस्या से क्या करना है, तपस्या की आवश्यकता है, और अगर भगवान की आराधना नहीं होती है तो तपस्या से क्या फायदा है। इसमें अनुवाद लिखा है, अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की पूजा करता है और उनको ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है तो फिर कोई बहुत कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सब प्रकार की तपस्या करने के बाद भी वो व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं पहुंच पाता है तो फिर तपस्या का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के बिना जितने प्रकार की तपस्याएं हैं वो सब क्या हैं, व्यर्थ का परिश्रम है। अच्छा, एक श्लोक हरि भक्ति शुद्धोदय का है, इसमें तपस्या के बारे में लिखा है। भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपहा, अप्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोकरंजनम। इसका मतलब क्या है, अगर भगवान की भक्ति नहीं होती है तो जो भी जाति है, शास्त्र ज्ञान है, जप है, तप है, वो सब बेकार है। अप्राणस्य देहस्य, क्योंकि देह में अगर प्राण नहीं है, अगर शरीर में प्राण नहीं है तो उसको सजावट करना क्या है, लोक रंजनम, लोगों का जो है ना मनोरंजन है, और क्या फायदा है। मुर्दे को जो है अगर आप सजाते हो तो लोगों का मनोरंजन होता है, उससे फायदा क्या है। उसी प्रकार से अगर भगवान की भक्ति नहीं अपने जीवन में, है ना, तो जीवन तो बेकार है। अब तपस्या, जप और शास्त्र ज्ञान से फायदा क्या है, सब बेकार है। तो इस तरह से तपस्या के बारे में हमने चर्चा की है। अब इसमें गीता में निकाली है ग्यारहवें अध्याय का 53वां श्लोक, इसमें भगवान यज्ञ दान तपस्या के बारे में बताते हैं। ग्यारहवें अध्याय का श्लोक संख्या 53। पेज नंबर 390 नहीं, हाँ 392। इसमें भगवान क्या कहते हैं, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेजिया सकेवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान कहते हैं तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में पहचान मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो यहां तो भगवान ये कह रहे हैं कि कोई मुझे यज्ञ से, तपस्या से, दान से नहीं देख सकता। अब देखिए आज के श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, तपस्या और दान ये कर्म पवित्र करने वाले हैं व्यक्ति को। यहां भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है, यज्ञ दान तपस्या के द्वारा कोई मुझे नहीं देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यज्ञ दान तपस्या कर्म पवित्र करते हैं व्यक्ति को, और जब व्यक्ति पवित्र होता है तो फिर क्या उसकी भगवान में श्रद्धा पैदा होती है, श्रद्धा, साधु संग, है ना। और इस तरह से फिर जब वो भगवान के भाव के धरातल, भक्ति के भाव के धरातल पर आता है, प्रेम के धरातल पर आता है, तो फिर उसको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो ये यज्ञ दान तपस्या ये कर्म जो है ये साधन है, भक्ति में सहायक होते हैं। और फिर अगर यज्ञ दान तपस्या ये जो कर्म है अगर भक्ति के साथ किए जाते हैं तो भगवान का दर्शन होता भी है। जैसे श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में महाराज नाभि के यज्ञ का वर्णन है। महाराज नाभि ने यज्ञ किया था भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान जो है उस यज्ञ में प्रकट हुए, भगवान ने उस यज्ञ में साक्षात दर्शन दिया। और महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी थी, तो उनको फिर भगवान ने जो है वरदान दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। तो भगवान फिर जन्म लेते हैं नाभि और मेरु देवी को अपना पिता और माता बनाते हैं। तो यज्ञ से भगवान के दर्शन होते हैं यज्ञ के द्वारा। उसी प्रकार से दान, दान के द्वारा भी भगवान के दर्शन होते हैं दान के द्वारा। जैसे रंत देव थे, अगर भगवान की भक्ति के साथ अगर दान किया जाए तो दान से भगवान के दर्शन होते हैं। रंत देव थे, 48 दिन तक उन्होंने उपवास किया था, उसके बाद फिर उन्हें कुछ भोजन प्राप्त हुआ, तो एक ब्राह्मण आ गया, भूखा था तो उसको दे दिया, फिर कुछ बचा तो वो खाना चाहते थे तो एक शूद्र आ गया, वो भूखा था तो उसको दे दिया, अब कुछ पानी बचा था तो एक चांडाल आ गया अपने कुत्तों को लेकर के कि मेरे कुत्ते प्यासे हैं, तो कुत्तों को उन्होंने पानी पिला दिया महाराज रंधदेव ने। तो उस दान के द्वारा जो है भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया रंधदेव को। उसी प्रकार से कुरु, राजा कुरु को भी जो है ना दान के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था। जिन कुरु के नाम से जो है कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है, कुरुक्षेत्र ये राजा कुरु एक बहुत महान राजा हुए हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, और कुरु वंश भी जो ना उनके नाम से ही प्रसिद्ध है। अर्जुन को भी कुरुनंदन भगवान ने कई बार कहा है, तो कुरु के वंश में अर्जुन ने जन्म लिया है, इसलिए अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ और कुरुनंदन ऐसे कई शब्द भगवान ने कहे हैं, है ना। तो ये राजा कुरु जो है वो जो कुरुक्षेत्र स्थान है वो पहले कुरुक्षेत्र नाम से नहीं जाना जाता था, तो वो चाहते थे कि यहाँ जो है वो कुछ ऐसा प्रभाव डालें कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए उसको धर्म का फल प्राप्त होगा, आने मात्र से उसको धर्म क्षेत्र बनाना चाहते थे, कुरुक्षेत्र को वो धर्म क्षेत्र बनाना चाहते थे। तो समय ना तो वो कुरुक्षेत्र नाम था उसका, ना धर्म क्षेत्र नाम था, लेकिन अब वो नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा और धर्म क्षेत्र कैसे पड़ा, इसकी एक घटना है। तो महाराज कुरु जो है ना हल लेकर के जोतने लगे, खेती करने लगे। अब इंद्र कहते हैं कि आप किस लिए सब खेती कर रहे हो, ये हल क्यों जोत रहे हो है? तो वो कहते हैं कि मैं तो जो ना धर्म की खेती करूंगा, यहाँ पर धर्म की फसल उगाऊंगा, जो भी व्यक्ति आएगा उसको धर्म का लाभ होगा, बिना कुछ किए उसको धर्म का फल प्राप्त होगा। तो इंद्र जो ना बार बार हंसते हैं उनके कार्य को देख करके और चले जाते, फिर हंसते हैं फिर देख के चले जाते। लेकिन महाराज कुरु ने अपने प्रयास को बंद नहीं किया और उनका प्रयास देख करके भगवान जो है किसी मनुष्य के वेश में आ गए और बोले कि आप ये जो कार्य कर रहे हो, जो खेती कर रहे हो, इसके लिए अपना कुछ बीज तो दो, बिना बीज के बोए कैसे जो है आप धर्म की खेती करोगे, तो बीज दो अपना। तो उन्होंने जो है अपना बायां पैर आगे बढ़ा दिया, तो भगवान ने अपने चक्र से उनके बाएं पैर को काट दिया। और भगवान कहते हैं कि अभी पर्याप्त नहीं हुआ और बीज चाहिए, तो दायां पैर उन्होंने बढ़ाया, दायां पैर को भी भगवान ने चक्र से काट दिया। भगवान कहते हैं और बीज दो, अभी बीज पर पूरा नहीं हुआ है, तो बायां हाथ दिया, तो भगवान ने बायां हाथ को भी चक्र से काट दिया। भगवान कहते हैं अभी और बीज चाहिए, अभी बीज और पर्याप्त नहीं हुआ इसमें, तो दायां हाथ दिया, दायां हाथ को भगवान ने काट दिया। फिर भगवान कहते हैं अभी और बीज चाहिए, तो उन्होंने अपना सिर भगवान को दिया। तो भगवान फिर जो है ना प्रसन्न हो गए, भगवान उनको दर्शन दिया और फिर वरदान दिया कि हाँ अब जो है तुम्हारी इच्छा है कि ये धर्म का स्थान हो, कोई व्यक्ति यहाँ अगर आएगा, अगर निवास करेगा या प्राण छोड़ेगा तो उसको धर्म का फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से तब कुरु ने दान दिया और भगवान का दर्शन प्राप्त किया। तो कुरु इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। इसी प्रकार से तपस्या से भी भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, नारद जी ने जो विधि बतलाई, जिस मंत्र का उपदेश दिया, उसका जाप किया, जो विधि बतलाई उस विधि के अनुसार ध्रुव महाराज ने तपस्या की और 6 महीने में साक्षात भगवान का दर्शन किया। तो तपस्या से भगवान के दर्शन होते हैं। अब श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, वो प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक संख्या 28-29 है। इसमें बताया गया है कि यज्ञ है, दान है, तपस्या है, जितने भी कर्म हैं वो सब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं और बाकी कुछ मतलब नहीं होता उनका। जिसमें लिखा है वासुदेव है पराम वेदा, वासुदेव है पराम खां, वासुदेव है परा योगा, वासुदेव है परा क्रिया, वासुदेव है परम ज्ञानम, वासुदेव है परम तपः, वासुदेव है परो धर्मो, वासुदेव है परा गति। हर चीज भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। वासुदेव परा वेदा, जितने भी वेद हैं, ज्ञान जितना भी वेदों का ज्ञान है वो सब किस लिए है, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को जानने के लिए है, है ना। और वासुदेव परामखा, जितने भी यज्ञ हैं उनका उद्देश्य क्या है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। वासुदेव परायोगा, और जितने भी योग हैं ये भगवान कृष्ण को ही साक्षात्कार करने के लिए हैं। और वासुदेव पराक्रिया, जितने भी क्रियाएं हैं जो वेदों में बताएंगे, ये अनुष्ठान वगैरह हैं, ये भी सब किस लिए हैं, आखिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। और वासुदेव परम ज्ञानम, तो भगवान कृष्ण ही परम ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही तत्व, अद्वैत तत्व है। वासुदेव परम ज्ञानम और वासुदेव परम तपः, और जितने भी कठोर तपस्याएं की जाती हैं वो भगवान वासुदेव को जानने के ही लिए होती हैं। वासुदेव परो धर्मो, और जो धर्म है वो भी क्या है, असली धर्म भगवान कृष्ण से प्रेम करना, ये असली धर्म है। वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति, और वासुदेव ही भगवान कृष्ण ही जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य हैं, परम लक्ष्य, परम गति भगवान है, कृष्ण है। तो इस तरह से हमने चर्चा की है। अब हरि भक्ति विलास में भी कुछ श्लोक हैं इसी प्रकार के, भगवान के नाम से जो है यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दान का भी फल प्राप्त होता है, तपस्या का भी फल प्राप्त होता है भगवान के नाम से। तो लघु भागवत में एक श्लोक है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदके कल्पमासं यज्ञायुतम मेरो सुवर्ण दानम गोविंद कियते न समम शतांशः। इस श्लोक में लिखा है कि गोविंद की कीर्ति के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है ये सब बड़े बड़े जो पुण्य कर्म हैं। जैसे गोकोटि दानम ग्रहण खगस्य, मतलब ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय करोड़ गाय का दान दिया जाए वो भी गोविंद की कीर्तन के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। 1 करोड़ गऊ का दान अगर आप करते हो चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, तो वो भी जो है ना गोविंद के कीर्तन के 100वें हिस्से के बराबर नहीं है। या प्रयाग गंगोदक कल्पवासा, प्रयाग में और गंगा के तट पर 1 कल्प तक बात करो, 1 कल्प का मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल तक आप बास करते हो गंगा के तट पर या प्रयाग में निवास करते हो, उसका भी फल जो है गोविंद के कीर्तन के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करो आप, अश्वमेध यज्ञ करो, वो भी गोविंद के कीर्तन के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मेरु सुवर्ण दानम, सुमेरु पर्वत का जो सोना है, पूरा सोने का पर्वत है, वो भी अगर दान कर दो आप, सुमेरु पर्वत जानते हैं 84 लाख योजन, नहीं 84,000 योजन ऊंचा है सुमेरु पर्वत, कुल मिला के 1 लाख योजन की ऊंचाई है सुमेरु पर्वत की, यानी 8 लाख मील ऊंचा ये सोने का पर्वत है, ये भी अगर आप दान कर दो, इतना सोना दान कर दो, तो भी गोविंद के कीर्तन के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और भी गरुड़ पुराण में लिखा है, वाजपेय सहस्राणाम नित्यम फलम अभीप्सीम प्रातरुत्थाय भूपाल कुरु गोविंद कीर्तनम। सोनक ऋषि अमृत महाराज को उपदेश दे रहे हैं, कौन? सोनक ऋषि अमृत महाराज को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम रोज 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाना चाहते हो तो क्या करो, सवेरे उठ करके गोविंद का कीर्तन करो। 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल अगर पाना चाहते हो रोज, तो सवेरे उठ करके क्या करो, कुरु गोविंद कीर्तनम। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, माता देवहूति कहती हैं कपिल भगवान से, अहो बत सपचो तो गरीयान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुदार्या ब्रह्मानो चुरनाम गृणन्ति एते। माता देवहूति कहती हैं कि अरे जो चांडाल है वो भी बहुत श्रेष्ठ है, जिसकी जेहवा के अग्रभाग में तुम्हारा नाम हमेशा रहता है, तुम्हारे नाम का कीर्तन करता है अगर कोई चांडाल भी, तो वो श्रेष्ठ है। तेपुस तपस्ते, उसने सब प्रकार की तपस्याएं कर ली, अगर वो तुम्हारे नाम के सिवा और कुछ बोलता ही नहीं है और चांडाल भी हो तो वो धन्य है, उसने सब प्रकार की तपस्याएं कर ली, जो वो सब प्रकार के यज्ञ कर लिए, सस्नु उसने सब प्रकार के स्नान कर लिए, ब्रह्मानुचुर और सब वेदों का पाठ भी कर लिया, क्योंकि वो आपके नाम का उच्चारण करता रहता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, तथा चोत्तम लोके तपास्त्री हरि कीर्तनम कलो युगे विशेषण विष्णु प्रीत के समाचरे। इसमें क्या लिखा है कि इस संसार में सबसे उत्तम तपस्या क्या है, श्री हरि कीर्तन, श्री हरि का कीर्तन करना सबसे उत्तम तपस्या है संसार में, और विशेष रूप से कलयुग में। विष्णु प्रीत्या समाचरित, विष्णु की प्रसन्नता के लिए इसका आचरण करना चाहिए, श्री हरि कीर्तन करना चाहिए। फिर स्कंद पुराण में एक श्लोक लिखा है, दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादि नाम चयाम शक्तयो देव महताम सर्व पापे हरा शुभाम राजसो या सुमेधान ज्ञान अध्यात्म वस्तु न आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापिता स्वेशु नामसु। इसमें क्या लिखा है कि भगवान ने अपने नामों में सब प्रकार की शक्तियां डाल दी हैं, मतलब जितनी दान की शक्ति है, जितने प्रकार के दान हैं उनकी शक्ति भी अपने नाम में डाल दी है, जितने प्रकार के व्रत हैं उनकी भी शक्ति अपने नाम में डाल दी है, जितने प्रकार की तपस्याएं हैं वो उनकी शक्ति भी अपने नाम में डाल दी है, तीर्थ जितने प्रकार के तीर्थ हैं उनको भी शक्ति अपने नाम में डाल दी है, क्षेत्रादि नाम जितने प्रकार के क्षेत्र हैं, है ना, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र है, स्त्री क्षेत्र है ना, तो वो सब जितने भी क्षेत्र हैं उनकी शक्तियां भी अपने नाम में डाल दी हैं। शक्तियों देव महताम, बड़े बड़े देवताओं में भी जो शक्तियां हैं वो भी अपने नाम में डाल दी हैं। सर्व पाप हरा शुभा, सब प्रकार के पाप को हरण करने की जो शक्ति है और कल्याणकारी शक्ति है अपने नाम में डाल दी है। राजसूय है, राजसूय यज्ञ की भी जो शक्ति है वो भी अपने नाम में डाल दी है। अश्वमेध नाम, अश्वमेध यज्ञों की शक्ति भी डाल दी है। ज्ञानस्य अध्यात्म वस्तुना, और ज्ञान की जितनी शक्ति है, अध्यात्म वस्तुओं में जितनी शक्ति है वो सब खींच करके, सब वस्तुओं से, सब स्थानों से खींच करके वो शक्ति भगवान ने क्या किया है, अपने नाम में डाल दी है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया है, यज्ञ दान तपस्या ये कर्म जो है भगवान कहते हैं कि पवित्र करते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं?
इनका प्रश्न है कि गीता के 3rd अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, तो वह कर्म क्या है?
और नियत कर्म, तो नियत कर्म का मतलब यह है, उसको कहते हैं सुधर्म यज्ञ, सुधर्म यज्ञ है। तो जो व्यक्ति जो है क्षत्रिय है तो वो अपने उस कर्म के द्वारा भगवान की प्रशंसा, भगवान की, भगवान को प्रसन्न करता है ना। युद्ध भी यज्ञ है, जैसे अर्जुन के सामने जो युद्ध है, युद्ध कार्य जो आ गया है ये भी एक यज्ञ है। इसमें भी क्षत्रिय जो ना अपने जीवन की आहुति देता है ना, अपने प्राणों की आहुति डालता है, तो ये क्षत्रियों के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। तो क्षत्रिय भी जो ना अगर अपना शरीर त्यागता है इस युद्ध में, तो ये बहुत दुर्लभ मृत्यु कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है ना सुधर्म यज्ञ इसको कहते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, इनका प्रश्न है कि हरि नाम की जब इतनी महिमा बताई गई है तो हरि की जो दूसरी सेवाएं हैं वो फिर कम लगती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हरि नाम से जो है ना हम सबसे पहले जुड़ पाते हैं, हरि नाम के अलावा और कोई दूसरी गति नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवलम, कलो नास्ते 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 वित्र। कलयुग में और किसी प्रकार से आप भगवान की सेवा कर ही नहीं पाओगे, आप समझे, चेतना दूषित है। चेतना दूषित होने के कारण आप भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकते हो। तो दूषित अवस्था में, पतित अवस्था में कलयुग के पतितों का उद्धार करने के लिए भगवान के नाम की विधि बताई गई है। और इसी से फिर जब नाम से कोई व्यक्ति पवित्र होता है तो फिर भगवान की और सेवाएं कर पाता है। अब आप समझे ना, तो नाम से फिर जो है भगवान की भक्ति का द्वार खुलता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि नाम से फिर आगे कुछ है ही नहीं, नहीं, नाम से आगे।
नाम की तुलना की गई है भौतिक संसार की वस्तुओं से, तो कहा गया है कि नाम के सेवा और कोई वस्तु नहीं है, तो 14 भुवनों में नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं नाम से कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। नाम से कोई व्यक्ति पवित्र होता है तो फिर वह भगवान के रूप को समझ सकता है, फिर भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो सकता है, भगवान के रूप का महत्व समझ सकता है और फिर भगवान के गुणों को समझ सकता है, भगवद गीता को समझ सकता है। इस प्रकार नाम से कोई व्यक्ति शुद्ध होता है तो भगवान के रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।